بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے درس سہائے ستہ میں جو حدیث مبارکہ ہم سنیں گے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان میں نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و یدیه۔ ترجمہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی آگے شرح اور وضاحت کرنے سے قبل، اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی سیرت کے کچھ مختصر احوال ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نامور صحابی ہیں، یمن کے قبیلہ اشعر سے آپ کا تعلق ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو اشعری بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہی آپ کو دولت اسلام دولت ایمان نصیب ہوئی، اور پہلے آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد حبشہ سے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ سکونت اختیار کر لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زبید اور عدن جو یمن کے ساحلی علاقے ہیں ان کا حاکم مقرر فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ کا حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو گورنر مقرر کیا۔ آپ سے 360 احادیث کریمہ مروی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان و تابعین کی ایک بڑی تعداد آپ کے شاگردوں کی فہرست میں ہیں، اور خاص کر آپ کے جو صاحبزادگان ہیں ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم، موسیٰ، انہوں نے آپ سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کتاب میں 54 احادیث یا 57 احادیث آپ کی نقل فرمائی ہیں۔ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سنِ وفات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 41 یا 44 یا 45 ہجری میں آپ کا وصال کوفہ کے مقام پر ہوا۔ اچھا، آپ ہی کے تاریخ سنِ وفات اور مقام وفات میں اختلافی دوسرا قول بھی ہے کہ آپ کی جو وفات مکہ مکرمہ میں 52 ہجری میں ہوئی۔ تو یوں ہم حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں، جن کی ذکر کردہ روایت جو ہم نے سنی ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل اسلام کو، یعنی جس بندے کا اسلام سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام نسائی نے کتاب الایمان میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میں اسی مضمون کی ایک اور روایت وہ ایو الاسلام افضل کی جگہ اس کے اندر الفاظ یہ ہیں ایو المسلمین افضل، یعنی مسلمانوں میں سب سے فضیلت والا مسلمان کون سا ہے. تو بہرحال مسلمانوں میں افضل مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ اپنی زبان سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچائے. ایذا اور تکلیف یہ زبان اور ہاتھ کے علاوہ دیگر ہمارے اعضاء سے بھی لوگوں کو پہنچتی ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اعضاء کے مقابلے میں زبان کا اور ہاتھ کا جو ذکر ارشاد فرمایا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں زبان اور ہاتھ یہ دیگر لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ورنہ تم راہ چلتے ہوئے کسی کو ٹانگ بھی اگر مار دیں تو یہ بھی ایذا پہنچانی ہے. اس شخص کا، اس مسلمان کا اسلام بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اپنی ذات سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص جو زبان کا ذکر فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، کہ دیگر مسلمان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، تو یہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اعضاء کو بالخصوص ذکر فرمایا کیونکہ ان کی ایذا رسانیاں، ان کے ذریعے پہنچنے والی تکالیف دیگر اعضاء کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر اس لیے ارشاد فرمایا کہ زبان تکلیف پہنچانے میں یہ ہاتھ سے بھی بہت آگے ہے. وہ کس طرح؟ کہ زبان سے پہنچنے والی تکالیف ہاتھ سے پہنچنے والی تکالیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. مثلا گالی دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، زبان کے ذریعے سے ظلم اور ناانصافی پہ مشتمل آرڈر جاری کر دینا، اس آرڈر کے ذریعے سے کروڑوں اذیتیں کسی بھی شخص کو پہنچ جاتی ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کے ذریعے پہنچنے والی جو ایذا ہے وہ ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ آسان بھی ہیں. مثلاً جس کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانی ہے تو اس کو آدمی کال کر کے بھی کچھ نازیبا جملے کہہ کر، کچھ اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے جملے کہہ کر بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. اس کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اس تک اپنا واٹس ایپ ریکارڈ کر کے بھی کوئی تکلیف دے اور دل آزار جملے کہہ کر بھی اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہاتھ کے ذریعے پہنچائی جانے والی اذیت کے لیے جس کو تکلیف پہنچائی جائے گی اس کا سامنے ہونا، اس کا قریب ہونا، مطلب یہ ضروری ہوتا ہے. تو ہاتھ کے ذریعے ہونے والے ظلم کے مقابلے میں زبان کے ذریعے ہونے والی ظلم اور زیادتی یہ زیادہ ہے. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کی جو اذیتیں ہیں، تکالیف ہیں، یہ ہاتھ اور دیگر اعضاء کے ذریعے پہنچنے والی تکالیف سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی عربی شاعر نے اس بات کو اپنے ایک شعر کے اندر یوں ذکر کیا، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی جو نیزے، برچیاں، تلواریں، ان آلات حرب کے ذریعے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کسی کو زخم لگ جاتے ہیں، کسی کے جسم میں کٹنگ ہو جاتی ہے، بالآخر اس کے زخم بھر جاتے ہیں. ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو تکلیف، جو کٹنگ، جو دل آزاریاں زبان کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں تو زبان کے ذریعے ہونے والے زخم وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، وہ بھرتے نہیں ہیں. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے उस मुसलमान का काम ये नहीं है कि वो दूसरे मुसलमानों के लिए बाई से आज़ार बना हो, बाई से तकलीफ़ हो, बल्कि मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी ज़बान से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखता है, उनको सलामती दे रहा होता है। तो जिसकी ज़बान से लोग महफूज रहें, यानी इसकी ज़बान ऐसी हो कि जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, बल्कि इसकी ज़बान ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों को सलामतियाँ नसीब हो रही हों, लोगों को फ़वाइद हासिल हो रहे हों। इसी तरह इसके हाथ से लोग सलामत रहें, लोगों को तकालीफ ना पहुँचे, तो वहीं इसके हाथ के ज़रिए से लोगों की मदद हो रही हो, लोग इसके ज़रिए से अपनी अजियतें दूर करके महफूज बन रहे हों, तो मुसलमान की शान ये होनी चाहिए। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान, जवामिउल कलीम एक किस्म है जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्तसर से अल्फाज में बहुत वसी मजामीन को दर्ज फरमा देते हैं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये मुबारक कलिमात, ये बज़ाहिर कितने मुख्तसर हैं कि पूछा गया कि कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है, किस मुसलमान का इस्लाम सबसे अफजल है, तो आपने फरमाया मन सलीमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, उस मुसलमान का कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दीगर मुसलमान महफूज रहते हैं। तो अगर हम इस हदीस मुबारक में बयान की जाने वाली बात पर अगर हम अमल कर लें और इस हदीस मुबारक के मकसद को समझने में कामयाब हो जाएं, तो हमारा मुआशरा बदअमनी से और फसादात से, बेचैनी से बहुत जल्द नजात पा जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब हमें इस हदीस मुबारक पे अमल करने की सआदत नसीब हो गई, तो फिर हुकूकुल इबाद की तमाम सूरतें वो अदा होना शुरू हो जाएंगी। आदमी अपने ज़रिए से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, अजियत नहीं पहुंचाएगा, ज़बान का सही इस्तेमाल करेगा, अपने हाथों का दुरुस्त इस्तेमाल करेगा, हकदार को उसका हक पहुंचाएगा। तो फिर इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे के जब हुकूक अदा करना शुरू हो जाएंगे और किसी तरह से हम दूसरे मुसलमानों की हक तलफियाँ नहीं करेंगे, तो मुआशरा अमन व अमान का गहवारा बन सकता है। तो आज जो हर तरफ हमें जुल्म, खयानत, चोरी, डाकाजनी, बदकारी, चोर बाजारी, सूदखोरी, बदअहदी, बददियानती, गीबत, चुगली, गालियाँ, खून रेजियाँ, ये जो हज़ार हर किस्म की खराबियाँ जो हमारे मुआशरे में दाखिल होकर पूरी मुस्लिम कौम की ईज़ा रसानी का बाइस बनी हुई है, जिससे मिल्लत इस्लामिया का निज़ाम, अमनो सुकून सब तहस नहस होकर रह गया है, तो अब कोई मुसलमान ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होता कि जो मुसलमानों ही से दुख और तकलीफ ना पा रहा हो। यानी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से तकलीफ पहुंच रही है। आप अपने घर से निकलते हैं, मोबाइल आपके घर के पास ही आपसे छीन लिया जाता है, आप अपनी बैंक से अमाउंट जरूरी लेकर अपने घर पहुंच ही रहे होते हैं, पीछे आपके लोग लग जाते हैं, घर पहुंचने से पहले पहले ही किसी पॉइंट पर या बिल्कुल घर पहुंचने पहुंच कर दरवाजे पर ही बंदे को लूट लिया जाता है। ये क्या है? एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के जरिए तकलीफ पहुंच रही है। तो अगर हम इस हदीस मुबारक को हिर्ज़े जान बना लें और अपने आमाल और अपने अफ़ाल का इस हदीस मुबारक को रहनुमा बना लें, तो इंशाअल्लाह ये एक ही हदीस मुबारक हमारे मुसलमानों के लिए अमनो सुकून का ज़ामिन बन जाएगी। क्योंकि हर एक मुसलमान फिर दूसरे मुसलमान को जब ये जहन बना ले कि मैंने अपनी ज़बान से इसको तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, इससे क्या होगा कि फिर गाली गलौज ख़त्म हो जाएंगी। जब ज़बान से मैं दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, ये जहन बन गया, तो मैं गइबत नहीं करूँगा, मैं चुगली नहीं करूँगा, मैं फिर बदअहदी, वादा खिलाफी नहीं करूँगा। तो जब ज़बान से किसी मुसलमान को अजियत ना पहुंचाने का जहन बन गया, तो जबान से होने वाली हक तलफियां भी खत्म हो जाएंगी। इसी तरह अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तो जब ये जहन बन जाएगा, तो फिर आदमी ना टारगेट किलर बनेगा, ना दूसरों को कत्लो गारत जदी करेगा, ना अपने इन हाथों से पिस्टल हाथ में लेकर किसी से मोबाइल छीनेगा। इसी तरह हाथ के जरिए से होने वाले जुल्म ज्यादती से आदमी महफूज रहेगा। तो अगर हम इस हदीस मुबारक पे अमल करने वाले बन जाएं तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। अगर हम गौर करें तो हमारे घरों में भी एक बेसुकूनी सी रहती है, बेचैनी रहती है, हर आदमी दूसरे से उखड़ा उखड़ा रहता है। तो अगर हम गौर करें तो इसके अंदर हमें ये बात नज़र आएगी कि हम गौर करेंगे तो हमारी ज़बान से हमारे घर वालों को अज़ियत हो रही है, हमारे हाथों से घर वालों को अज़ियत पहुंच रही होगी। कोई ना कोई अज़ियत पहुंचने का सबब हमारे किरदार से, हमारे आज़ा से, घर के रहने वालों को, अतराफ में रहने वालों को, अपने हम जिस जगह काम कर रहे होते हैं वहाँ हमारे गुफ्तार से कितने लोगों की दिल आज़ारियाँ हो रही होती हैं। तो जब अगर हम गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें अपनी ज़बान पर एहतियात करने का ज़हन बनेगा और इंशाअल्लाह इस हदीस मुबारक पर अगर हमारा अमल हो गया कि जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मुसलमान की मिसाल जो दी है कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दीगर मुसलमान महफूज रहें, इस पर अगर हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे घर के मामला भी बेहतर हो जाएंगे, हमारे ऑफिस मामला भी बेहतर हो जाएंगे, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ये हर एक मुसलमान ने अपने अंदर इस हदीस मुबारक में बयान की जाने वाली जो बात है कि मुसलमान तो गोया वो है जिसके ज़रिए लोगों को सलामती, खैर, हिफाजत, आफियत मिल रही होती है, तो इंशाल्लाह हम जब इस पर अमल कर लेंगे तो हमारे ख़ानदान में, हमारे मुल्क व कौम में इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। एक हदीस मुबारक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल फरमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ला यग़लिमुहु, कि वो उस पर जुल्म नहीं करता। वला यख़ज़ुलुहु, और वो उसे जलील व रुस्वा नहीं छोड़ता। और वला यहक़िरुहु, और कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को हकारत से नहीं देखता, उसको हकीर नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अत्तक्वा हा हुना, तक्वा परहेजगारी फरमाया यहाँ पर है। तीन मरतबा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया। फिर मजीद फरमाया, बिहस्ति इमरिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अखाहुल मुस्लिम, के आदमी के शरीर होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। ये फरमाया, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, कि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर खून हराम है, उसका माल हराम है और उसकी इज्जत हराम है। यानी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के अमवाल में नाजायज तसर्रुफ करना, इसी तरह उसके खून में नाहक उसे तकलीफ पहुंचाना, उसको नाहक कत्ल करना, इसी तरीके से उसकी इज्जत को पामाल करना, ये एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है। तो इस हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई करार दिया है। ये एक ईमानी उखुवत है जो बज़ाहिर नस्बी हवाले से अगरचे वो रिश्ता ना हो जैसे सगे भाइयों का होता है, लेकिन इस्लाम मुसलमानों के दरमियान उखुवत का दर्स देता है। और इन नमल मोमिनून इख्वा, अल्लाह तबारक व ताला ने भी मोमिनीन को एक दूसरे का भाई करार दिया है। तो ये ईमानी रिश्ता है, इस्लामी रिश्ता है, इस्लामी रिश्ते के अतबार से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जिस तरह शहद की मक्खी मुख्तलिफ किस्म के फलों का रस चूसती है, अब उन फलों में कोई कड़वा रस होता है, कोई फीका होता है, कोई मीठा होता है, मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, रंग बिरंगी हैं, उन सारे फूलों का रस चूसने के बाद फिर वो अपने छत्ते में जब उनको उंडेल देती है, तो एक मीठा सा मशरूब जिसमें शिफा भी है, वो तैयार हो जाता है, जिसे हम शहद के नाम से याद करते हैं। तो ये जिस तरह मुख्तलिफ फूलों के रस जब एक छत्ते में आ गए तो वो शहद बन गया, उनमें मिठास पैदा हो गई, तो इसी तरीके से किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी भी सूबे से, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान जब कलमा इस्लाम पढ़ लेता है, तो कलमा इस्लाम पढ़कर दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब वो वाबस्ता हो जाता है, तो फिर उनका एक ही नाम हो जाता है मुसलमान, मुस्लिम। और इस इस्लामी उखुवत के अतबार से वो एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं। तो एक मुसलमान को चाहिए कि अपने दूसरे मुसलमान को पर किसी तरह का जुल्म ना ढाए और उसे बे यारो मददगार ना छोड़े, उसको हकीर ना जाने। फरमाया अत्तकवा हिना। तो एक माना इस हदीस मुबारक का ये किया गया है कि जिसको तुम हकीर समझ रहे हो, जिसके साथ जिल्लत आमेज मुआमला किया जा रहा है, तो इस हदीस मुबारक का खुलासा मुफस्सरीन ने ये भी बयान किया है कि जिस मुसलमान को हकीर समझा जा रहा है, जिसके साथ जिल्लत आमेज मुआमला किया जा रहा है, तो उस मुसलमान के दिल में तकवा परहेजगारी अगर हुई, तो वो तकवा और परहेजगारी तो उसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आला और अरफा मकाम दिला देगी। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इज्जत वाला तुम्हें वो है सबसे ज्यादा इज्जत वाला कि जो तुम्हें तकवा और परहेजगारी में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए किसी भी मुसलमान के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान के साथ हकारत आमेज सलूक करे। तो यूं ही एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर जुल्म से बाज रहना चाहिए कि जुल्म ये दुनिया में भी आदमी को जलील और रुस्वा करता है, आखरत में भी जलील और रुस्वा करता है। तो आदमी को जुल्म और सितम के आंधियां चलाने से बाज रहना चाहिए। ये जालिम आदमी मरने के बाद कहाँ जाएगा? अल्लाह ताला के हुजूर जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इस जालिम का क्या अंजाम होगा, तो इससे हमें डर जाना चाहिए। हजरत सैयदना इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मशहूर जमाना मजमू अहादीस किताब तिरमिजी शरीफ में हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी और हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों से ये रिवायत नकल करते हैं कि अगर तमाम आसमानों जमीन वाले एक मुसलमान का खून नाहक बहाने में शरीक हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व ताला इन सब को मुंह के बल औंधा करके जहन्नम में डाल देगा। तो हदीस मुबारक में फरमा दिया गया कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून बहाना भी हराम है। तो अगर सारी मखलूक मिलकर किसी एक मुसलमान के नाहक कत्ल में शरीक हो जाए, तो फरमाया गया कि सबको मुंह के बल औंधा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला को कत्ले नाहक इस कदर नापसंद है, बल्कि इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को ही कत्ल कर दिया। जिसने एक जान को बचा लिया, तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया, जिंदा रखा, बाकी रखा। तो हमें नाहक किसी के साथ नहीं करना, जुल्म ज्यादती नहीं करनी। तो याद रखें कि जालिम जो होगा वो कल बरोज़े क़यामत सख्त आजमाइश का शिकार होगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से जिसके पास दिरहम साजो सामान ना हो वही मुफलिस समझा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हकीकत से पर्दे हटाते हुए इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो कयामत के दिन नमाजें भी लाएगा, रोज़े भी लाएगा, ज़कातें भी लेकर आएगा। यानी उसके नामे अमाल में नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, ज़कातें भी हैं, और लेकिन साथ ही साथ इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई, इसका माल खाया, उसका खून बहाया, उसे मारा। तो इस तरह, तो अब इसकी जो नेकियां होंगी, जो ये नमाज की सूरत में लाया होगा, रोज़ों की सूरत में लाया होगा, इसी तरह इसने ज़कातें दी होंगी और भी दीगर नेक अमाल किए होंगे, तो इसकी नेकियों में से कुछ नेकियां इस मजलूम को दे दी जाएंगी। कुछ नेकियां इस वाले मजलूम को दे दी जाएंगी। इस तरह जिनके हुकूक इसने तलफ किए थे तो उनके हुकूक की अदायगी की सूरत इसके नेक आमाल के जरिए से की जा रही होंगी। फिर अगर लोगों की फिर भी हुकूक बाकी रहे और इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएं, तो फिर अब क्या होगा कि जो मजलूमों की खताएं हैं वो लेकर इस जालिम के ऊपर डाल दी जाएंगी और फिर इसे आग में फेंक दिया जाएगा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि आदमी बज़ाहिर कितना नेक अमाल भी कर रहा था, रोज़े भी रखे, सब कुछ किया, लेकिन वो शख्स अगरचे दुनिया में कितना ही मालदार था लेकिन आखिरत के एतबार से वो मुफलिस करार दिया जा रहा है। कौन? जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दीगर मुसलमान महफूज ना रहे। तो हमें चाहिए कि अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने आँखों से भी किसी मुसलमान को अजियत ना पहुँचाएँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, जुल्म ज़्यादती एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व ताला को बिल्कुल भी नापसंद है, कतअन नापसंद है। और लोगों की हक तलफियाँ अगर किसी ने की हैं तो कल बरोज़ क़यामत उन मजलूमीन के हुकूक जालिम से दिलवाए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुकूक की अदायगी कल बरोज़ क़यामत किस तरह होगी उसकी मिसाल इससे भी इरशाद फरमाई कि बेसींग वाली बकरी और सींग वाली बकरी जब आपस में तसादुम हुआ, लड़ाई हुई, तो सींग वाली बकरी ने जब अपने सींग के ज़रिए से बेसींग वाली बकरी को अजियत पहुंचाई होगी, तो कल बरोज क़यामत बेसींग वाली बकरी के सींग लगा दिए जाएंगे और उसको इस बात का इख्तियार होगा कि वो अपने दुनिया में पहुंचने वाली अजियत का आज बरोज क़यामत दूसरी बकरी से, जालिम बकरी से बदला ले ले। तो इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि अपने आप को दूसरे मुसलमानों की हक तलफियों से महफूज रखें, बचा के रखें और ऐसा मुसलमान बन जाएं जैसा मुसलमान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम को पसंद है, यानी अल मुस्लिम। मुसलमान कौन है कि फरमाया गया मन सलीम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी ही व यदी ही, जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ऐसा ही बा किरदार और बा अखलाक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए कि जिस मुसलमान के ज़रिए दूसरे मुसलमानों की जानों, अमलाक और इज्जतें महफूज रहें।
बहुक्म अहदीस ईमान ये है कि हो सब से बढ़कर मोहब्बत नबी की।